जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो कैसे हम समझना है कि कुछ काव्यात्मक है, काव्यात्मक अलंकार है इस चित्रकेटु के लाखों 1 मिलियन की 10 लाख पत्नियां थी, या क्या कि वो वास्तव में वो सत्य है एक व्यावहारिक दृष्टि से, तो कैसे हम ये फैसला करते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जहाँ पे बता चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के अलंकारों के द्वारा, अलंकारों का इस्तेमाल करके भगवान का गुणगान किया है, और उनमें से एक अलंकार बताया गया अतिशोयक्ति। अतिशोयक्ति मतलब एग्जैजरेशन, जब इंग्लिश में बोलते हैं वास्तव में उसका वो नकारात्मक है भाव होता है, मतलब क्या है वो खामखा बढ़ा के बात कर रहे हैं, पर अतिशोयक्ति मतलब ये एक सकारात्मक है वास्तव में, कि वह उसका सौंदर्य बढ़ाता है उससे। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है स्लिम और थिन, तो थिन तो थिन मतलब ये तुम बहुत ही पतले हो, पर स्लिम मतलब आकर्षक है। तो वैसे जो अतिशयोक्ति है वास्तव में वह सकारात्मक है, वह एक श्रृंगार है। एग्जैजरेशन मतलब जो इंग्लिश में आता है वो नकारात्मक हो जाता है वो। तो इसलिए यहाँ पे कई बार जो कवि होते हैं, जो सबसे पहले शास्त्र जो है वो उसमें कई चीजें काव्यात्मक है, और भगवदगीता में हम देखते हैं अविनाशी तो तद्विधि भगवान कहते हैं, आत्मा का नाश नहीं होता है। 2.72 उस अध्याय के 17 श्लोक में बताया गया, और उसके बाद में 16वें अध्याय के 21 श्लोक में बताया कि काम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, आत्मा का नाश करते काम क्रोध तथा लोभ तस्मादित्यनन्तयत्, काम क्रोध लोभ आत्मा का नाश कर रहे, तभी आत्मा का नाश तो कोई नहीं कर सकता है। तो यह जो है यह व्यवहारिक नहीं है, यह काव्यात्मक है। आत्मा का नाश मतलब आत्मा के आध्यात्मिक चेतना का नाश है। तो मतलब हमें देखना यह है कि शास्त्र का एक सिद्धांत है, और शास्त्र में जो भी चीज बताई गई है वो चीजें उस सिद्धांत के अनुकूल हमें उसका अर्थ लेना है। तो उसके विपरीत अगर होगा, तो अभी यहां तक कि हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर कृष्ण भी सिद्धांत के विपरीत बोले गए तो हम कृष्ण के वचनों को भी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका उदाहरण क्या है, गोवर्धन लीला में कृष्ण कर्म मीमांसा का वर्णन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अरे तुमको देवताओं की पूजा करने की जरूरत क्या है, तुम कर्म करो, इंद्र को पानी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आचार्यगण बता रहे हैं, और संदर्भ से भी हमें स्पष्ट होता है कि ये कोई यहाँ पे कृष्ण कोई आध्यात्मिक गुरु के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे, वह एक लीला है, लीला में वो इंद्र को उकसाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। तो हमें जो भी शास्त्र में बताया गया है वो शास्त्र के सिद्धांत के लाइट में, के दृष्टिकोण से देखना है हम। तो अभी कुछ चीजें हैं जो शास्त्र के सिद्धांत, कुछ लोग ऐसे काव्यात्मक का विश्लेषण करेंगे, इंटरप्रिटेशन इज विश्लेषण नहीं, इंटरप्रिटेशन इज टीका, नहीं टीका इज कमेंट्री एक्चुअली, ठीक है। कोई कुछ ऐसा कोई ऐसा मतलब निकालेंगे जो ऐसा जो काव्यात्मक बोलेगे कि वह शास्त्र के सिद्धांत के विपरीत हो जाता है। ऐसे कि अभी कोई कहता है कि वास्तव में कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ ही नहीं, तो अभी ये तो महाभारत में उसका पूरा महाभारत क्लाइमैक्स ही है वो, कितना तो अगर वो काल्पनिक अगर हम बोलते हैं, या काल्पनिक या वो काव्यात्मक कुछ मेटाफोरिकल बोल दिया, तो फिर कितना महाभारत, कितना अब पूरा महाभारत ही मेटाफोरिकल बोलना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई आचार्य नहीं बताता, तो क्या ये क्या हो रहा है, सारे सिद्धांत के विपरीत हो गया ये। तो अगर कोई सिद्धांत के विपरीत है तो उसको उस प्रकार के काव्यात्मक अर्थ को स्वीकार नहीं करना है। पर कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि काव्यात्मक अर्थ नहीं निकालेंगे तो वो सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। जैसे कि बताया कि अभी आत्मा का विनाश होता है तो वहाँ पे हमको काव्यात्मक लेना पड़ेगा उसको। तो अभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है जो जिसके हम काव्यात्मक अर्थ ले सकते हैं या व्यावहारिक अर्थ ले सकते हैं, और उसका सिद्धांत पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए चित्रकेतु के इतनी सारी पत्नियां थी, तो अभी यह कोई वक्त कह नहीं, ये एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कृष्ण, डोंट आप भौतिक तर्क वितर्क मत लगाओ, भगवान कृष्ण के सब कुछ संभव है। हाँ भगवान कृष्ण के संभव है यहाँ पे, पर यहाँ पे भगवान कृष्ण कहाँ है इस लीला में, चित्रकेतु है। और यहाँ पे चित्रकूट कोई महान भक्त भी नहीं है, चित्रकूट कोई महान योगी भी नहीं है, और उस समय उनके पास कोई दिव्य शक्तियां भी नहीं है, ऐसे बताया गया है कि मीन्स अगर हम कहानी के ही तरह से देखेंगे तो मतलब चित्रकेतु में उस समय इतनी शक्ति भी नहीं है कि एक संतान उत्पन्न कर सके तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगाना कि चित्रकेतु के पास कोई अचिंत्य शक्ति थी जिससे कि वो 10 लाख पत्नियों के साथ रह सकता था, वह उसके संदर्भ में न तो जरूरी है और न ही कंसिस्टेंट है, वो नहीं उसके साथ जुड़ता है तो। और ऊपर से अगर उस कहानी का मर्म क्या है कि आपको भौतिक सुख की कितनी भी योजनाएं, कितनी भी आपके पास सुविधाएं हो, फिर भी आप सुखी नहीं होगे। तो इतनी सारी पत्नियां थी, फिर भी एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी बाद में पुत्र प्राप्त हुआ तो भी उससे भी दुखी आया। तो वह जो 10 लाख जो पत्नियां हैं, वह काव्यात्मक रूप से ले या व्यावहारिक रूप से ले, इससे उस कहानी के सार पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कहानी के सिद्धांत पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कोई भक्त कहेगा कि हाँ ये भागवतम सा अचिंत्य है, उसमें सब हो सकता है, और उनके वो श्रद्धा रख सकते हैं, पर इसको हमें एक फेथ इशू नहीं बनाना चाहिए कि तुम इसको विश्वास नहीं कर सकते इस मतलब तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तुम्हें श्रद्धालु ऐसे नहीं है। क्योंकि एक और चीज़ वहाँ पर बताया गया है कि जब चित्रकेतु को पुत्र हुआ हर्षशोक, उसके बाद में वो उसके बाकी पत्नियों के बारे में दुर्लक्ष्य करने लगा और उसके कारण वो दुखी हो गए। इसका मतलब क्या है, उसके पहले वो उन सबको की ओर लक्ष्य दे रहे थे। तो अभी एक आदमी अगर 10 लाख पत्नियां हैं तो आप गणित करो, साल में भी एक बार मिल नहीं सकते तो फिर तो कितना लक्ष्य दे सकते थे। तो यहाँ पे जो है ये कोई कहता है काव्यात्मक है, तो वास्तव में उसमें कोई भी हानि नहीं है। इसको हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसको कुछ लिटरली लेना जरूरी है, पर कोई लेना चाहेगा तो ले सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है कि शास्त्रों का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य को केंद्र में रखना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था किसी ने कि कोई शिष्य ने पूछा कि हम जब स्कॉलर्स पंडितों से बात करते हैं, उनको अगर हम बताते हैं भागवतम में कि भागवत ने बताया कि ये जो महाराज युगसेन थे उनके करोड़ों करोड़ों बॉडीगार्ड थे, तो वो कहते हैं कैसे संभव है, कहाँ रह रहे थे वो, कहाँ उनका टॉयलेट था, कहाँ उनका घर था, वो हम पे हंसने लगते। तो प्रभुपाद जी ने तभी क्या बोला, आपको भागवतम के हजारों श्लोक हैं, उसमें से पंडितों से बात करने के लिए वही श्लोक मिला क्या तो हमें हमेशा शास्त्रों का सिद्धांत क्या है उस पर जोर देना है, और सिद्धांत की दृष्टि से हमें सब कुछ देखना है। तो भागवतम के पहले स्कंद में भी आता है कि जब आई थिंक कौन सा 10वां या 11वां अध्याय जो है, उसमें भगवान कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे हैं हस्तिनापुर से, और तभी एक रास्ता बताया है कि भगवान इस शहर से गए, इस शहर से गए, इस शहर से गए, और तभी तात्पर्य भगवान लिखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक है, वह भगवान ने कौन सा मार्ग लिया है वह बिल्कुल उसका जांच करके उसका विश्लेषण करने का प्रयास संशोधन कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी का तल है वह हमेशा बदलते रहता है, और उसके कारण यह जो बिल्कुल विशेष रूप से स्पष्ट रूप से संशोधन करना बड़ा मुश्किल है। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी आर सिंपली सेटिस्फाइड दैट कृष्णा हैज रीच्ड द्वारका एंड इज कंटिन्यूइंग हिज पास्ट टाइम विद अर्जुन। हम संतुष्ट हैं कि अभी भगवान कृष्ण द्वारका आ गए और वहां पर द्वारका अपने भक्तों के साथ लीला करने वाले हैं। तो इसलिए शास्त्रों का जो संदेश है उसका एक महत्वपूर्ण सार है और उसका सिद्धांत है, उसका सार है, उस पर ही हमें जोर देना चाहिए। और बाकी सारी चीजों को किस तरह से समझना है, दो चीजें उसमें, सिद्धांत के विपरीत से नहीं समझ निकालनी है, दूसरा है कि ऐसी चीजों पर जोर नहीं देना चाहिए जिससे कि लोगों का सिद्धांत से वन निकल के कहीं और चले जाए। तो सिद्धांत पे जहाँ तक मन रहेगा उतना वो प्रगति करेंगे, उतना वो आकर्षित होंगे भगवान की ओर, और उतना वो अग्रसर होंगे भक्ति में।